Recording in progress.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو اس کلاس میں ہم سورہ انعام کی ان آیات کی تفسیر معارف القرآن جلد نمبر 3 سے پڑھ رہے ہیں، اور اس میں کیا ہو گیا بھائی؟ ایک دم سے ہر چیز چینج کیوں ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی زوم کے اوپر؟ ایک منٹ، پہلے سے نا آپ جس کو پیج کو شیئر کر کے رکھا کریں، بیکاز بیچ میں اگر آپ شیئر کرتی ہیں تو میری ساری ونڈوز جو ہیں نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. اب وہ چیٹ ونڈو کھلتی ہی نہیں ہے اس کے بعد پھر نا، تو اب میں کوشش کر رہا ہوں چیٹ ونڈو کھولنے کی، وہ کھلی نہیں رہی ہے، اس لیے کہ شاید آپ اسکرین شیئرنگ کا کام کر رہی ہیں اس وقت. جی اچھا جی، ٹیپ تو ہے لیکن وہ کام نہیں کرتا. بہرحال تنیب تو ہو گیا، وہ ہائیڈ ہو جاتی ہے دوسری ونڈوز کے پیچھے. اینی ویز، تو سورت الانعام کی ان آیات کی ہم تفسیر معرف القرآن کی جلد نمبر 3 سے پڑھ رہے ہیں. ان کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر ہم نے مکمل کر لیا تھا، اور اب جو ہے اس آیت کے بارے میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا، اس کے اندر پہلی آیت کا دوسرا حصہ کہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے آسمانوں کو، زمین کو اور نور کو بنایا، اور نہیں اب ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم سم ون ایلس ڈو دس نا، ٹھیک ہے، لیٹس ہیو سم ون ایلس ڈو دس ان شاء اللہ. ظلمات اور نور کو بنایا، ثم الذین کفروا، اور پھر اس کے بعد جن لوگوں نے، یعنی اس کے باوجود جن لوگوں نے کفر کیا، بربہم آپ کے رب سے، اپنے رب سے، یعدلون تو ان کو یہ برابر کرتے ہیں، ان کو یہ برابر کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کس کو برابر کر دیتے ہیں؟ کہ اللہ رب العزت کو، جو کہ حقیقی خالق ہے، مالک ہے اور بنانے والا ہے، کرنے والا ہے، اس کو جو ہے وہ دوسرے ایسی مخلوق سے کہ جو کہ مخلوق ہے، جس کو کہ اس نے تخلیق کیا ہے اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے فائدے ڈالے ہیں، تو ان کو بھی عبادت میں شریک کر لیتے ہیں، برابر کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی شرکت پسند نہیں ہے، ذرہ برابر بھی شرکت پسند نہیں ہے اپنے ساتھ. اللہ رب العزت کی ایسی بڑائی ہے، ایسی عظمت ہے، ایسی بزرگی ہے، ایسی شان ہے اور ایسی غیرت ہے، باقی لفظوں سے ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں یہ لفظ شاید اس سے بات سمجھ میں آ جائے. ایسی غیرت ہے اللہ رب العزت کی کہ اللہ رب العزت جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ذرہ برابر کی شرکت کو بھی قبول نہیں فرماتے. کیوں کیوں کہہ رہے ہیں یہ والی بات؟ کیونکہ یہ جو مشرکین ہیں یا نصارہ ہیں या जितने भी दूसरे लोग हैं, सवाय इसके ये क्या नाम है इसका, मजूस, मजूस ने तो 50-50 कर दिया ना, ठीक है, मजूस ने 50-50 पार्टनरशिप कर दी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाउज बिल्ला 50% और जो है ना वो अहरमान को जो है वो अहरमन को जो है वो 50%, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को सबसे बड़ा मानते हैं और बाकी शरीकों को छोटा मानते हैं, ठीक है ना, छोटा मानते हैं। नसारा भी अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाउज बिल्ला बाप मानते हैं और ईसा अलैहि सलाम को बेटा मानते हैं, बेटा बाप से छोटा होता है, ठीक है। और उसी तरीके से ये जो मुशरिकीन है जिनके बारे में अभी जो हमने पढ़ना था कि ये जब राह से भटका तो उसने ना सिर्फ सूरज चांद और सितारों को बल्कि आग पानी दरख्त पत्थर यहां तक कि कीड़ों मकोड़ों को भी अपना मसजूद व माबूद और हाजत रवा और मुश्किल कुशा बना लिया, ठीक है। अब ये कीड़ों मकोड़ों को अल्लाह रब्बुल इज्जत के इक्वल पार्टनर नहीं बनाते, कोई भी जो है ना वो कीड़े मकोड़ों को ये नहीं कहता कि जितनी पावर अल्लाह में है उतनी ही ताकत जो है वो कीड़ों मकोड़ों के अंदर है, नहीं, ये बहुत छोटे छोटे पार्टनर्स हैं, बहुत ही माइन्यूट किस्म के पार्टनर्स हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतनी भी पार्टनरशिप कबूल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, राइट। और अल्लाह ताला को ये बात सचती है, अल्लाह ताला का पूरा ये हक है, कोई दूसरा करे ना इस तरह की बात कि मुझे बर्दाश्त नहीं है कि मेरे साथ जो है ना वो कोई शरीक बनाया जाए, तुम मेरे साथ, जैसे माँ, माँ तो खैर फिर माँ होती है उसके, हम तो उसके लिए भी कबूल नहीं करते, ठीक है ना, कि माँ कहे कि नहीं चलो ठीक है मैं किसी छोटी माँ को कबूल कर लूंगी अपने साथ, तुम किसी जो है ना वो छोटी अम्मी बना लो किसी को, वो खानदानों में छोटी अम्मी बोला जाता है, लेकिन उनको जो है ना वो माँ वाले हुकूक नहीं दिए जाते हैं, तो माँ जो है वो शिरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आजकल तो बीवियां बर्दाश्त नहीं करती, पुराने जमाने में तो बीवियां बर्दाश्त करती थी ना, चार चार की इजाजत थी ना, तो तीन को बर्दाश्त कर लेती थी जब शौहर जो है वो चार कर लेता था। आज आप दूसरी की बात करें किसी बीवी के सामने, राइट, बीवी जो है वो दूसरी बीवी को बर्दाश्त नहीं करती, हालांकि शरीयत ने जो है वो हक दिया हुआ है शौहर को कि आप जो है वो चार कर सकते हैं, सौकन को, सौतन नहीं, सौकन, ठीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को हक पहुंचता है क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत तो मुकम्मल कुदरत रखते हैं हर चीज के ऊपर, और जो कुछ हमारे पास है सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत के दिया हुआ है, लेकिन हम अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते हैं, अल्लाह ताला को हक है कि वो बर्दाश्त ना करें इस वाली शिरकत को, किसी भी किस्म की शिरकत को, ठीक है। तो ये जो मुशरिकीन हैं ये फिर इस किस्म की मखलूक को, हत्ता के पत्थर को, ठीक है, इनको जो है वो अपना मसजूद और माबूद और हाजत रवा और मुश्किल कुशा बना लेते हैं, ये हमारे मुश्किल को हल करने वाले हैं। और हकीकत में यही, यानी मुश्किल कुशा का मतलब क्या होता है कि ये अपनी मर्जी से और अपने इख्तियार से हमारी मुश्किल को हल कर सकते हैं, ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर मुश्किल को हल करने में, बल्कि ये फलाना इंसान या फलाना हैवान या फलाना जो है वो दरख्त है, दरख्तों को भी तो सजदा करते हैं ना, ठीक है, और उनको भी तो मुश्किल कुशा, दरख्तों को भी तो मुश्किल कुशा मानते हैं, पत्थर और लकड़ी के बने हुए बुतों को भी तो मुश्किल कुशा मानते हैं, ठीक है, ये नहीं सोच करके कि इसकी वजह से अगर मेरी मुश्किल हल हो गई, जैसे दरख्त मुझे मिल गया कहीं पर, है, मैं भूखा प्यासा कहीं जा रहा था और जो है ना बिल्कुल मेरी जिंदगी के बचने के कोई आसार नहीं थे, एकदम से मुझे एक दरख्त मिल गया, उस दरख्त के अंदर जो है ना वो फल थे, उन फलों को खा करके मेरी मुश्किल दूर हो गई, राइट, फलों को खा करके मेरी मुश्किल दूर हो गई, तो अब ये दरख्त जो है ये सबब बन गया ना मेरी मुश्किल के दूर होने का, ठीक है ना, मौत आने वाली थी अब जो है वो मौत से बच गए, ठीक है ना, तो दरख्त जो है वो सबब बन गया। लेकिन ये समझना कि दरख्त अपनी मर्जी से मेरा सबब बनाए और इसके पीछे अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई अमल दखल नहीं है, तो अब दरख्त से इतना खुश होए, इतना खुश होए कि दरख्त के सामने जो है ना वो टकाटक दनादन सजदे करने शुरू कर दिए, ठीक है, कि ये मेरी मुश्किल का हल करने का सबब, ये तो इसकी वजह से मेरी मुश्किल हल हो गई है, चलो जी मैं इसको सजदा करना शुरू कर दूं, ये है मुश्किल कुशा समझना, ठीक है। या किसी इंसान से मुलाकात हो गई, उसने जो है वो आपको पानी पेश कर दिया, आपकी जान बच गई उस पानी की वजह से, अब जो है ना वो इंसान के सामने सजदे करने शुरू कर दिए, आपने मेरी जान बचाई, आप ही जो है मेरे मुश्किल कुशा हैं, आप ना होते तो कुछ भी ना होता, राइट? तो ये इंसान को मुश्किल कुशा समझना शुरू कर दिया। भाई इंसान से आपकी मुलाकात अल्लाह ने करवाई है, इंसान के पास जो पानी जिसकी वजह से आपकी जान बची है वो अल्लाह ने जो है वो पानी पहुंचाया है, ठीक है ना? ठीक है, वो सबब है तो मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो कहेगा चलो मैं तुम्हें पानी दिया ना मैंने, अब जो है ना तुम कोई हराम काम करो क्योंकि मैंने तुम्हें पानी दिया है, तो ये तैयार, हाँ जी आपने मुझे पानी दिया है, मैं आपकी वजह से जो है ना वो हराम काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ये है, फिर आपने उस आदमी की जो है वो बंदगी शुरू कर दी क्योंकि उसकी वजह से अल्लाह के हुक्म को तोड़ दिया, तो इस बंदे की बंदगी कर ली, अल्लाह की बंदगी छोड़ दी, ठीक है? तो मुश्किल कुशा समझना, और दूसरी चीज क्या है कि उसकी अताअत करके अल्लाह की अताअत को जो है वो परे रख दिया, छोड़ दिया उसको, तो इसको जो है वो उसकी बंदगी करना कहलाएगी, ठीक है? तो ये इंसान जो है वो करना शुरू कर देता है अपने नफ्स के और शैतान की अमल दखल की वजह से। कुरान करीम ने इस आयत में अल्लाह ताला को आसमान और जमीन का खालिक और अंधेरे उजाले का बनाने वाला बतला कर उन सब गलत ख्यालात की तरदीद कर दी कि नूर व जुलुमात और आसमान और जमीन और उनमें पैदा होने वाली तमाम चीजें अल्लाह ताला की पैदा की हुई और बनाई हुई है, तो फिर उनको कैसे अल्लाह ताला का शरीक व सहीम कहा जा सकता है? ठीक है, सब कुछ अल्लाह ने बनाया, तो उनके अंदर जितनी भी सलाहियतें हैं, उनके पास जितने भी वसाइल हैं, वो सब कुछ भी तो अल्लाह ताला ने बनाया, वो भी तो अल्लाह ताला ने उनको सलाहियतें दी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, इसी वजह से तो समझाते हैं हमारे मशायख मुफस्सरीन कि अल्हम्दुलिल्लाह का ये मतलब है कि जो कुछ भी जिसके पास भी है वो सब का सब अल्लाह ही का ही दिया हुआ है, तो तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। पहली आयत में आलम कबीर यानी पूरी दुनिया की अजीम तरीन चीजों को अल्लाह ताला की मखलूक व मोहताज बतलाकर इंसान को सही अकीदे तौहीद का सबक दिया गया है, ठीक है? आलम कबीर यानी पूरी दुनिया की अजीम चीजें, यानी जो बैरूनी दुनिया जिसको कहते हैं आफाक, इसके लिए आफाक का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, आफाक काफ, ठीक है? जैसे कुरान के अंदर जो काफ आता है वो वाला आफाक, तो आफाक को अल्लाह ताला की मखलूक और मोहताज बतलाकर इंसान को सही अकीदे तौहीद का सबक दिया गया है। इसके बाद दूसरी आयात में इंसान को बतलाया है कि तेरा वजूद खुद एक आलम सगीर है, इंसान का अपना वजूद जितना भी है, 4 फुट का है, 5, 6, 7, 8, 10, जितने फुट का भी आपका जिस्म है, वो एक आलम सगीर है, इसको अनफुस कहा जाता है, अनफुस, ठीक है? यानी हमारा अपना वजूद, नफ्स का लफ्ज तो उसी को अनफुस, ठीक है? तो अनफुस और आफाक ये दो ही आलम है, हर इंसान के लिए दो ही आलम है, एक उसका अपना और दूसरा जो है वो उसके अलावा, बाकी सब कुछ वो आफाक है। अगर इसी की इब्तिदा व इंतहा और बूदोबाश पर नजर करे तो अकीदा तौहीद एक वाज़ह हकीकत बनकर सामने आ जाएगा, ठीक है? वफी अनफुसकुम अफला तुबसिरून, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं तुम्हारे अपने नफ्स के अंदर, तुम्हारे अपने अनफुस के अंदर क्या तुम देखते नहीं हो? तो उसी में गौर करने से जो है ना वो अकीदा तौहीद वाज़ह हकीकत बनकर सामने आ जाएगा। पहले भी यानी 1400 साल पहले भी जो है ना वो इंसान के पास इतना कुछ था अपने वजूद में गौर करने के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो उसको तौहीद की दलील के तौर पर पेश कर रहे हैं, इवन 1400 साल पहले, जबकि ये साइंसी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस और ये जो माइनर लेवल पे जा करके, अभी एक डॉक्टर साहब आए थे ताजियत करने के लिए, वाले साहब के बड़े डॉक्टर्स तो हमारे भाई चूंगे डॉक्टर हैं, तो उनके कॉलीग हैं बेशुमार, तो हर डॉक्टर जो है कोई ना कोई फिर बात इस तरह की करता है, तो वो बताने लगे कि वो हीमाटोलॉजिस्ट थे, तो जी हीमाटोलॉजी जो है वो ब्लड के क्या के साइंसेस होती हैं उसके अंदर, फिर हीमेटो पैथोलॉजिस्ट पैथोलॉजी अलग होती है, और पैथोलॉजी के इतनी सारी ब्रांचेस बन गई। तो बताने लगे कि यानी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए बाकायदा डिपार्टमेंट्स बन गए हैं, और पूरी पूरी वो यानी शोबे बन गए मेडिकल साइंस के, हत्ता के वायरोलॉजी, वायरसेस को स्टडी करने के लिए बाकायदा मेडिकल साइंस के जो है वो शोबे बन गए, जिसके अंदर सिर्फ वायरसेस को स्टडी किया जाता है। वायरस कितनी छोटी मखलूक होती है। अभी कोरोना के बहाने बहुत सारी चीजें लोगों के सामने आई, तो उस वक्त ये बात बहुत कि भाई वायरस जो है ये माइक्रोस्कोप से भी आप नहीं देख सकते, इतना छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स फायर करता है, तो वो जो रिफ्लेक्ट होते हैं ना उनसे वायरस की मौजूदगी का पता चलता है। इतनी छोटी चीज है वायरस। तो ये वायरस जो है वो हमारे वजूद में जाता है, और जो है वो ऐसे ऐसे जो है वो उसके अंदर तब्दीलियां कर देता है कि इंसान जो है वो वायरल फीवर का शिकार हो जाता है, कोरोना वायरस का शिकार हो जाता है, पता नहीं कौन कौन से फ्लू वायरस का शिकार हो जाता है। तो ये डिटेल्स तो अब जा करके खुली हैं। तो ये सब किसने बनाया है? मुसलमान होते हैं, इस बात का जुबान से इकरार करते हैं, बल्कि तस्लीम भी कर लेते हैं दिल से कि सब अल्लाह ताला का बनाया है। तो क्या वायरस अल्लाह का बनाया हुआ नहीं है? है, बाकी सब अल्लाह का बनाया हुआ है, वायरस अल्लाह का बनाया हुआ नहीं है जैसे? ठीक है, हम सोचते नहीं है ना इन बातों के ऊपर कि अल्लाह ताला की कुदरत जो है ना वो हर चीज पर मुहित है। ऐसा नहीं है कि फलाने पर है और फलाने पर नहीं है, फलाने पर है और फलाने पर नहीं है। ठीक है, तो अपने इब्तदा के हम कैसे, हमारी इब्तदा हुई चाहे रूहानी तौर पर इब्तदा को देखें या जिस्मानी तौर पर इब्तदा को देखें, फिर दुनिया में हमारे आने का जो प्रोसेस है उसको देखें। ठीक है, कुरान मजीद में भी उसका जिक्र है मुख्तसर आयात के अंदर, वो जो तीन अंधेरों का जिक्र है वगैरह, और साइंटिफिक डिटेल्स को देख लें। ठीक है, तो इन सब के अंदर जो है ना वो अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह, कोई और नहीं कि जिसकी के इन्वॉल्वमेंट हो ऐसे मरबूत निजाम को बनाने में और चलाने में। ठीक है ना, किसी दूसरे से आप क्या कर सकते हैं कि अच्छा भी हमारा जो जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है ना, ये जो है लगता है कि फलानी पावर्स ने बनाया है, और हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना ये जो है वो लगता है कि फलानी पावर ने बनाया, यानी फलानी कोई कुदरत है, कोई पावर है, कोई कोई मखलूक है, या कोई पता नहीं क्या चीज है, उसने हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया है, और हमारा जो है ना वो फलाना सिस्टम जो है वो उसने बनाया है, और फलाना सिस्टम इसने बनाया है। नहीं, हमारा वहमो गुमान भी इस तरफ नहीं जाता कि ये गोया कि जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल, हमें जहाजों के बारे में बड़ा शौक था बचपन के अंदर, तो पढ़ते रहते थे कभी इधर कभी उधर। ठीक है, तो वो हमने कहीं पढ़ा जी पाकिस्तान है ना वो अमेरिका से उधार पे और लंगड़े लूले किस्म के F-16 खरीदे थे। ठीक है ना, तो हमें जो है वो बड़ा शौक था जहाजों को देखने का, तो उन टुन आते थे उन्हीं को देख करके, उनकी लाइटें देख करके, उनकी खूबसूरती देख करके। तो बहरहाल F-16 के बारे में कहीं भी पढ़ा कि F-16 जो बनाया है ना अमेरिका का है, तो उसमें जो है ना वो उसका फलाना वाला पार्ट जो है वो फलानी कंपनी ने बनाया है, और जो है वो जनरल डायनामिक्स ने उसका फलाना वाला पार्ट बनाया है, और जनरल इलेक्ट्रिक ने जो है वो उसका फलाना वाला पार्ट बनाया है, और इस जगह ने उसका ये पार्ट बनाया। ये कंपनियां नहीं, मुख्तलिफ कंपनीज कंसोर्शियम होते हैं जो कि मिल करके एक तैयारा बना रहे होते हैं, चाहे वो F-16 हो, चाहे वो आपका कमर्शियल पैसेंजर प्लेन हो। तो सबके बनाए हुए टुकड़ों को फिर जो है ना वो असेंबल किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, और फिर जाकर के एक प्लेन बनता है। राइट, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ भाई ये कोई एक ने नहीं बनाया ये सब कुछ। इंसान का जो बदन है उसको देखने किसी मुल्हिद और किसी यानी दहरीय साइंसदान, उसका भी जहन इस तरफ नहीं जाता कि ये मल्टीपल कंपनियों ने मिलकर के ये इंसान का बदन बनाया है, अलग अलग सिस्टम्स किसी ने बनाए। नहीं, दिस इज ऑल कंबाइंड, दिस इज ऑल इन वन सिंक, सिंक्ड है ये सब का सब आपस में। तो ये है हमारे परवरदिगार की शान, ये है हमारा परवरदिगार ना, जिसका कुरान बैठ करके अभी अभी हम पढ़ रहे हैं, उसी का कलाम हम बैठ करके पढ़ रहे हैं, उसी को जानने की हम जो है वो इसके जरिए से कोशिश कर रहे हैं। तो तौहीद ऐसी होनी चाहिए तौहीद हमारे, कि हमारा ध्यान अल्लाह की तरफ हर वक्त रहे, हर वक्त अपने परवरदिगार की तरफ ध्यान रहे, कैसे उससे जो है वो मुगाफिल हो सकते हैं। तो फरमाते हैं कि इसमें इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी خلقكم من طين ثم قضى أجلا. वो वही है जिसने कि तुम्हें तकलीफ किया गारे से, गीली मिट्टी से, जैसे बात हुई थी कबर के अंदर जो है ना, वो उसका कैसा लेप कर रहे होते हैं स्लैब्स के ऊपर। जब हम हमारे बदन को, जब हम दुनिया से चले जाएंगे ना, हम सब के सब, कोई एक भी नहीं है कि जो कि इस दुनिया में हमेशा रहेगा, सबने जाना है, और सबने जो है वो उसी तरीके से कब्र के अंदर लेटना है, और अपनी मर्जी से नहीं, दूसरों की मर्जी से लेटना है। दूसरे में हमें डालेंगे वहां पे जाकर के, फिर हमारे ऊपर भी स्लैब रखी जाएगी, राइट? अगर, और ये उस वक्त है कि जब हमें कब्र नसीब हुई, अगर हमें कब्र नसीब हुई, हमें तो इतना भी नहीं पता कि हमें कब्र नसीब भी होगी कि नहीं। अगर खुदा ना खास्ता समंदर के अंदर डूब गए और बॉडी भी ना मिली, तो कब्र नसीब होगी ये वाली, ये जो मिट्टी पत्थर वाली गारे वाली कब्र है? अगर जहाज में आग लग गई और जुनेद जमशेद मरहूम की तरीके से जल करके कोयले हो गए, पता नहीं उसके अंदर जो है वो डीएनए आइडेंटिफिकेशन के जरिए से तो उनकी बॉडी को आइडेंटिफाई किया गया था, राइट? तो प्लेन में कितना सफर करते हैं, राइट? मुसलमान दीनदार होते हैं, उम्रे के सफर करते रहते हैं, बाकी जो है वो कभी 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 कहीं कभी कहीं, बस एक प्लेन में आग लग जाए, फिर जो है ना ये बॉडी और कफन दफन ये सब पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो खबर मिलने का भी हमें नहीं पता, हमारी तो ये हकीकत है, ठीक है ना? और मिल गई अगर, तो फिर क्या होगा? उसी तरीके से जो है वो मिट्टी के अंदर छोड़ करके लोग सारे के सारे घर पहुंच जाएंगे, ठीक है? तो सुम कवा अजला, यानी अल्लाह ही वो जात है कि जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, कि आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी के खमीर से पैदा फरमाकर उनमें जान डाल दी, ठीक है? मिट्टी के अंदर वैसी एनर्जी नहीं थी, वैसी अल्लाह ताला ने रूह नहीं पैदा की कि वो एक चलता फिरता बातचीत करने वाला और सोच समझ रखने वाला इंसान बन सके। हाँ, मिट्टी के अंदर इतनी रूह है कि वो जिक्र करती है, अपने परवरदिगार का जिक्र करती है, ठीक है? और कभी अल्लाह ताला उस जिक्र को जो है वो मोजजाती तौर पर या करामाती तौर पर हमारे कानों को सुना भी देते हैं। इतनी तो रूह है मिट्टी के अंदर, पत्थर के अंदर, लेकिन इतनी रूह नहीं थी कि वो हमारे जैसा एक चलता फिरता इंसान बन जाए। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने एक खसूसी रूह जो है वो डाली, ठीक है? जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वगैरह ज्यादा इस बात को समझते हैं, मुझे तो याद नहीं है कुछ इसमें से, कि इतने वोल्ट्स की जो है ना वो एनर्जी पहले से मौजूद थी, लेकिन मजीद काम करने के लिए इतने वोल्टेज एनर्जी जो है ना वो ऊपर से मजीद जो है वो इंसर्ट करनी पड़ी, तब वो वाला काम हो सकता है, ठीक है? तो ये जो हमारी रूह है, इंसानी रूह, ये एक्स्ट्रा वोल्टेज एनर्जी के तौर पर, ठीक है? ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये अल्लाह की जात से आती है। अल्लाह की जात के इन्वॉल्वमेंट के बगैर, अल्लाह की जात के दिए हुए बगैर कोई पावर नहीं है। ला हौला वला कुव्वता, ला वला कुव्वता, ये कुव्वत जो है ना ये है रूह के, जिसकी वजह से जो है वो फिर कोई कुछ करने के काबिल होता है। तो अल्लाह ताला ने मिट्टी से खमीर पैदा फरमाकर उसमें जान डाल दी, और आम इंसानों की गिजा मिट्टी से निकलती है। फिर इस जान को बरकरार रखने का अल्लाह ताला ने ऐसा निजाम बनाया कि इसको गिजा का वो मोहताज बना दिया, कि गिजा आएगी, ठीक है, और इसको तुम्हारा जो है ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस करेगा, वो जो है फिर आपके सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जाएगा, इससे जो है ना फिर आपका वजूद बरकरार रहेगा, ठीक है? जैसे किसी डिवाइस को चलाने के लिए आपको एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन लगाने की जरूरत पड़ती है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी आती रहती है, तब वो डिवाइस चलती है। कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं कि वो थोड़ी देर के लिए अपने पास स्टोर कर लेती हैं, अगर आप पीछे से प्लग को निकाल दें, जैसे हमारा सेलफोन, राइट? वो चार्ज हो जाता है और फिर अपने पास को स्टोर कर लेता है, लेकिन अल्टीमेटली वो चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है, फिर से चार्ज करने की जरूरत पड़ती है। अल्लाह ताला ने बिल्कुल यही सिस्टम हमारे बदन का भी बनाया। तो वो गिजा कहाँ से मिलती है? मिट्टी से निकलती है। गिजा से नुतफा बनता है, नुतफे से इंसान की तख्लीक अमल में आती है, ठीक है? इसी तरह से जो है वो नस्लें आगे चलती हैं इंसानों की। तो मिट्टी की इन्वॉल्वमेंट हमारे अंदर कितनी है कि बिल्कुल बिगिनिंग में भी मिट्टी, और फिर मेंटेनेंस के लिए भी मिट्टी, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए भी मिट्टी, मिट्टी के अंदर पौधे उगेंगे, उसके अंदर जो है वो फल निकलेंगे, उसके अंदर अनाज निकलेगा, उस अनाज को या तो हम डायरेक्टली खा लेंगे या फिर मवेशी खाएंगे, और फिर हम मवेशियों को खाएंगे यानी उनका गोश्त, ठीक है, या उनका दूध पिएंगे। इस तरीके से मेंटेनेंस भी मिट्टी के जरिए से चल रही है। मिन तुराबिन अला तुराबिन इला तुराबिन सुम्मा हिसाबिन व सवाबिन अव इकाबिन, माशाल्लाह, ठीक है, इन्होंने अरबी का एक शेर लिख दिया। मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन अखरा, ठीक है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है। अच्छा, हजरत मूसा अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी की एक खास मकदार से पैदा फरमाया जिसमें पूरी जमीन के अज्जा शामिल किए गए थे। यही वजह है कि औलाद आदम रंगो रूप और अखलाको आदात में मुख्तलिफ हैं, कोई काला, कोई गोरा, कोई सुर्ख, कोई सख्त, कोई नरम। सख्त और नरम से यहाँ पर मुराद जो है ना वो बॉडी की सख्ती और बॉडी की नरमी एज सच, वो भी होती है कुछ, जरा वो होता है ना लकड़ हजम, पत्थर हजम, सख्त जान जिनको कहते हैं, और कुछ ऐसे नरम फुल्की तरीके हैं, जैसे टुकड़ उड़ रहा है इधर से हवा आएगी तो वो उड़ जाएंगे, तो वो नरम जान इस तरह भी कह सकते हैं। लेकिन मिजाज की सख्ती और मिजाज की नरमी, एक फिजिकल सख्ती और फिजिकल नरमी होती है, एक जो है ना वो मिजाजी सख्ती और मिजाजी नरमी होती है। तो ये सारी जो जो वैरायटी है, कोई पाकीजा खसलत, कोई खबीस तबा, ठीक है, यानी खसलत के अंदर जो है वो पाकीजगी होती है, इसको नेचर कहते हैं, फितरत कहते हैं हम अपने मुहावरे के अंदर इसको, ठीक है, और कुछ जो है ना खबीस तबा होता है कि उसने मान के नहीं देनी होती है, उसने जो है वो अजियत पहुंचा करके उसको खुशी होती है, ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की तख्लीक है। तो इसमें जो है ना वो दो बातें हैं, एक तो ये है कि इंसान की तख्लीक मिट्टी से, ठीक है, तो इसमें फिर एक्चुअली ज्यादा तफसील, फिर खैर हर चीज में हम काफी तफसील कर रहे हैं तो इसमें क्यों नहीं कर रहे। एक तो ये है कि आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया था, और उस मिट्टी के अंदर जो है ना वो अल्लाह ताला ने रूह फूंक दी। अब इसके आगे जो सिलसिला चल रहा है ना आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, तो ऐसा नहीं है कि हाबील और काबील जो आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, और शीश अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे, और भी बहुत सारे बेटे होंगे, हमें इन तीन के नाम पता है, ठीक है, तो अब इनके भी जो है ना वजूदों को अल्लाह ताला ने अलग से मिट्टी से बनाया, फिर उसके अंदर जो है वो रूह फूंकी, ठीक है, नहीं बल्कि एक दफा मिट्टी से बना के रूह फूंक दी, अब जो है ना वो सारा का सारा जो है वो क्या बोले अंग्रेज इसके अंदर साइंटिफिक टर्म के अंदर, यानी मसल्स और सेल्यूलर स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, अब जो जो ह्यूमन सेल होता है नुतफा, राइट, स्पर्म जो भी कहें आप इसको, ये जो ह्यूमन सेल होता है, तो अब ये कोई मिट्टी से तो नहीं बना हुआ होता ना, ये तो एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ना, ठीक है ना, और बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ही की शक्ल में फिर वो सेल्स बढ़ते रहते हैं, बढ़ते बढ़ते रहते हैं, मेटाबॉलिज्म होता रहता है और बॉडी जो है वो क्रिएट होती रहती है। मिट्टी की इन्वॉल्वमेंट बस शुरू में थी, आगे नहीं है मिट्टी की इन्वॉल्वमेंट, ये एक उलमा का नजरिया है या एक ख्याल है, ठीक है, या एक ओपिनियन है। दूसरा ओपिनियन कि हर बंदे की जो है ना वो अल्लाह ताला ने मिट्टी से ही बनाई, आदम अलैहिस्सलाम को भी मिट्टी से, और फिर आदम अलैहिस्सलाम की औलादों को भी जो है वो मिट्टी से, और फिर उसके अंदर जो है ना वो अल्लाह ताला रूह फूंकते हैं। अब उसकी और इसकी फिर वेरिएशन है इसके अंदर कि जी मिट्टी से बनाना, हर हर एक को मिट्टी से बनाने का मतलब ये नहीं है कि बाकायदा जमीन की मिट्टी लेकर के बना रहे हैं हर एक की बॉडी को, बल्कि ये कि बॉडी की नशो नुमा जो है वो मिट्टी की चीजों से होती है, ठीक है, विच एवर, ठीक है, जो भी हो अल्लाह आलम, हमारे आखिरत का इसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है, बस ये एक इल्मी और एकेडमिक किस्म की नॉलेज है, ठीक है, हमने सुन ली, हमने पढ़ ली। अच्छा, लेकिन एक और बात जो कि इसके अंदर हमारे लिए काफी अहम है, ठीक है, जिसका के इफेक्ट जो है ना वो हमारे सोच, हमारी फिक्र के ऊपर और हमारे काम के ऊपर हो सकता है, दीन के काम के ऊपर उसका इफेक्ट हो सकता है, वो क्या है कि देखें इस वाले जुमले के अंदर जो फरमाया ना कि दुनिया के जमीन के मुख्तलिफ जगहों से मिट्टी ली, और उस मिट्टी में चूंकि हर हर जगह की मिट्टी शामिल थी, तो इसकी वजह से मिजाजों में जो है वो इख्तलाफ है, और फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर इख्तलाफ है, रंग के अंदर इख्तलाफ है, ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये बड़ी अहम है, ठीक है, क्योंकि इसका जो ताल्लुक है ना, ये फिर यानी इंसानों को समझने के लिए, उनसे डील करने के लिए और उन तक बात पहुंचाने के लिए, खुसूसन दावत व तबलीग की बात, ठीक है, ये समझ बड़ी अहम है। देखें, इसको कहते हैं कि आप यानी जिस टर्फ पे रहते हैं ना, टर्फ, क्रिकेट वाले जो है वो उसको ज्यादा जो है वो पिच के नाम से जानते हैं, क्रिकेट के अंदर पिच का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल होता है, और टर्फ का लफ्ज जो है वो हॉकी के अंदर ज्यादा इस्तेमाल होता था, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आप जिस इलाके में रहते हैं, जिस तरह की जमीन पर रहते हैं, जिस तरह के माहौल में रहते हैं, उसका असर जो है ना वो इंसानों के ऊपर होता है, ठीक है। ये बाकायदा एक साइंस भी डेवलप हो चुकी है, एंथ्रोपोलॉजी, एक पूरी यानी फैकल्टी, एक पूरी यानी वो है, स्टडी है, ये सब्जेक्ट है ये एंथ्रोपोलॉजी, उसके अंदर ये लोग फिर अब उसको सोचते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, लिखते रहते हैं इसके बारे में चीजें, ठीक है। तो इसका असर होता है इंसानों के ऊपर, इंसानों का मिजाज इस तरह से बन जाता है जिस तरह की मिट्टी के अंदर वो रहते हैं। हमारे मशायख भी इन बातों को बताते हैं कि जो सख्त पथरीली जमीन पर रहने वाले लोग होते हैं, उनका मिजाज भी पथरीला होता है, सहरा में रहने वाले लोग, उनका मिजाज भी जो है वो सख्त होता है, और जो है वो जो नरम जमीन की पे रहने वाले लोग होते हैं, यानी जहां पे आपाशी का वसायल मौजूद होते हैं, और जमीन जो होती है बड़ी सरसब्ज और जरखेज जमीन होती है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पंजाब, पंजाब का लफ्ज इस्तेमाल होता है, पंज आब, पांच पानियों वाले, हम जो है ना हमारे, अब हमारी तो ऐसी सोच और फिक्र नहीं होती है ना, ठीक है। तो हमने पंजाबी का जो जो लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ना, तो अब वो जो है ना उसका ताल्लुक हमने बना दिया पंजाबी जुबान से, ठीक है ना, कि जो पंजाबी जुबान बोलता है ना वो पंजाबी है, लेकिन हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये है कि ये जो पांच दरिया है ना, जो कि असल में तो मेरे ख्याल में छह दरिया हैं, बहरहाल पंजाब पांच दरिया के नाम से मशहूर हो गया, तो ये पांच दरिया जिस 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 इलाके में आते हैं ना, वो जगह जो है वो पंजाब है, पंज आब, ठीक है। तो अब ये दरिया जो है वो सिर्फ इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब का सूबा है, खाली उस सूबे के अंदर तो ये दरिया नहीं गुजरते, ये दरिया जो है ये तो कश्मीर से शुरू होते हैं, ठीक है, ये तो ऊपर से शुरू होता है ना, हिमालया से या करैकुलम के वहां से, या जो है वो पता नहीं, वो हिंदू कश के कहीं कहीं से कोई दरिया निकल रहा है, कोई दरिया कहीं से निकल रहा है, कोई दरिया कहीं से निकल रहा है। तो पंज आब इस हकीकत के एतबार से देखा जाए तो सिर्फ पंजाबी जुबान नहीं, अच्छा पंजाब के अंदर भी कौन से खाली पंजाबी जुबान बोली जाती है, वहां पे सराइकी भी बोली जाती है, वहां पे हिंदको भी बोली जाती है, वहां पे और भी पता नहीं कौन कौन सी जुबानें बोली जाती हैं, ठीक है ना, और पंजाबी में भी इतने सारे डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं कि आप जो है वो गोया के इधर की पंजाबी अलग है, उधर की पंजाबी अलग, इधर की पंजाबी अलग है, सिंध को जो है वो अलग एक सूबा बना दिया, भाई सिंध के अंदर भी तो दरिया बह रहा है, कश्मीर से जो है वो तो दरिया शुरू हो रहा है, और जिसको आप पंजाब कहते हैं तो इसके अंदर भी जो है वो दरिया बह रहे हैं, ठीक है। तो ये दरियाओं से रिलेटेड जो जमीन होती है ना, ये जमीन बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, ये पहाड़ों वाली जमीन से, और ये रेगिस्तानों वाली जमीन से, और ये समंदरी इलाके वाली जमीन से, ये बड़ी मुख्तलिफ जमीन होती है। तो अब यहाँ का जो माहौल होता है, यहाँ की जो आबो हवा होती है, और यहाँ की जो जमीन होती है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, इसका ताल्लुक पंजाबी जुबान से नहीं है, या सिंधी जुबान से नहीं है, या सराइकी जुबान से नहीं है, ठीक है, बल्कि इसका ताल्लुक तो आपके टर्फ से है। तो अब इस टर्फ के ऊपर रहने वाले, यानी इस किस्म की जमीन पर रहने वालों का एक मिजाज होता है। देखिए, मिट्टी की कितनी अहमियत है इंसान के वजूद में, कि कल भी बात हुई थी ना, शायद कल या परसों, कि
कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको जिधर की मिट्टी से बनाया अल्लाह ताला उसी मिट्टी में उसको पहुंचा देते हैं। पहुंची वहीं पे खाक, खाक जहां का खमीर था। ठीक है, तो इस खाक का जो कॉन्सेप्ट है ना कि जिससे अल्लाह ताला ने बनाया वहीं पे नबी अलैहिस्सलाम की तो हदीस मुबारक है इसके ऊपर गवाह है, यानी हदीस की नस से भी ये बात साबित है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस मिट्टी से बनाया उसी मिट्टी से अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया। और फिर उसके बाद उस यानी गोया कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मिट्टी थी वो, उसमें से अब जितनी मिट्टी बच गई उससे अल्लाह ताला ने उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बनाया। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। ये तीनों जो है कब्र में भी जो है वो एक एक के साथ एक दूसरे के साथ यकजा हो गए। तो कितनी सिग्निफिकेंस है ये मिट्टी की हमारे वजूद के अंदर, और हमारे ना सिर्फ तख्लीक में बल्कि हमारे इंतहा के अंदर भी, दुनियावी एतबार से जो हमारी इंतहा है उसके अंदर इस मिट्टी का कितना अमल दखल है। तो ये खाली एक अजम्पशन वाली बात नहीं है कि हाँ भाई किसी को रियाज की मिट्टी से बनाया था ऐसी बस कहने की बात है तो इस वजह से उनकी कब्र जो है वो रियाज में बन गई, हालांकि पैदा जो है वो इंडिया में हुए थे और जो है ना वो अपनी जिंदगी का बड़ा इब्तदाई वक्त इंडिया में गुजारा, फिर उसके बाद जो है वो बांग्लादेश जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था वहां पे, मैं अपने वालिद साहब की बात कर रहा हूँ, इतना वक्त जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में गुजारा, फिर उसके बाद जो है वो कराची के अंदर इतना सारा अपनी जिंदगी का जो जवानी है और जो जॉब का सारा टाइम है वो सारा का सारा कराची के अंदर गुजारा, और फिर जो है ना वो आकर के रियाज में जो है वो अपना बुढ़ापा सारा का सारा गुजारा, और कब्र किधर बनी, रियाज के बिल्कुल दूर अफ्तादा रियाज से बाहर जा करके जो है वो कब्रिस्तान के अंदर वहां पे जा करके कब्र बनी। ठीक है, तो ये ऐसे ही नहीं हो रहा ना, ये सब कुछ हमारे नजदीक तो बस रैंडमली हो रहा है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ तो कोई चीज रैंडम नहीं है, कोई चीज बेतरतीब नहीं है, अल्लाह ताला की तकदीर में एक एक चीज सेट हुई हुई है, हमारे लिए भी सेट हुई हुई है लेकिन हमें पता नहीं है। हम कल अपने वाले साहब की कब्र के ऊपर गए तो वहां पे बहुत सारी बिल्कुल ताजा कब्रें उन्होंने तैयार करके रखी हुई थी, राइट। जिस रो में उनकी कब्र बनी है वो तो रो मुकम्मल हो गई, सारी कब्रें बन गई उसके अंदर, अब जो अगली रो है उसमें सारी बिल्कुल जैसे ना तैयार, हर घड़ी तैयार कामरान है हम, इस तरह से वो कब्रें तैयार थी। और बिल्कुल उन्होंने जो है ना वो जो व्हील बैरो होता है उसके अंदर कंकर भी भर के रखे हुए थे, इधर जो है वो स्लैब भी रखे हुए हैं, यानी बस झटपट कोई बंदा आए मैं तैयार बैठी हूं उसके लिए, इधर से उसको अंदर डालेंगे यूं तो उसके ऊपर स्लैब लगाएंगे, उसके ऊपर जो है वो गारा डालेंगे, उसके ऊपर जो है मिट्टी डालेंगे, इधर से जो है वो बुलडोजर आएगा वो बाकी मिट्टी डालेगा और उसके ऊपर स्लैब लगाएंगे, ये जा वो जा खत्म भाई। अब वो जो इतनी सारी कब्रें तैयार वहां पर हैं, क्या किसी को पता है कि किसने उसके अंदर जाना है, राइट। उस कदोकामत के यानी बड़ी उम्र के, चाहे कोई औरत होगी चाहे कोई लड़की होगी चाहे कोई लड़का होगा चाहे कोई मर्द होगा, अगर उसके लिए उसके खानदान वाले पसंद करेंगे कि जी उनको इस वाले कब्रिस्तान के अंदर हमने दफन करना है, तो ये खबर उनकी है, ये मेरी भी हो सकती है, ये किसी और की भी हो सकती है। ठीक है, वी डोंट नो, हमें नहीं पता। तो हमारे मशायख यही बात तो हमें समझाते हैं कि मौत बरहक है, कफन मिलने में शक शक है कि कफन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन मौत बरहक है और हमें नहीं मालूम कि वो कपड़ा जिसको हमारा कफन बनना है वो मार्केट में पहुंच चुका है, बस अब जो है ना वो उसको खरीद करके हमारा कफन बनना इतना रह गया है, हमें नहीं मालूम ये वाली बात। और हमें नहीं मालूम कि हमारी मिट्टी कहाँ की है और हमने कहाँ पे जाकर के दफन होना है। ये सारी बातें क्यों की जा रही हैं, ये किस्से कहानियां नहीं है, ये लफाजी नहीं है, ये इसलिए नहीं है कोई आपको जो है वो बस ऐसी वो एंटरटेन करने के लिए कि हाँ भाई आप 1 घंटा जो है ना वो आपका वसूल हो जाए आपका 1 घंटा, किस लिए है कि हम अपनी हकीकत को पहचाने, जिस इल्म के ऊपर हम फख्र करते हैं कि जी मुझे बड़ा मालूम है, मैं बड़ी जानती हूं, मैं बड़ा जानता हूं, क्या जानते हैं हम, क्या मालूम है हमें,
दूसरों के बारे में क्या मालूम, अपने बारे में कुछ नहीं मालूम, अपने बारे में कुछ नहीं मालूम। ठीक है, तो जो हमारे पास इल्म है वो अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, और उसका जो तकाजा है बस हम उसको पूरा करें, राइट, उसके ऊपर अमल करने की नियत करें, कोशिश करें और उसको आगे पहुंचाने की कोशिश करें, नाज ना करें उसके ऊपर, अपने आप को कुछ समझना ना शुरू कर दें, इस इल्म को अपनी जागीर समझना ना शुरू कर दें। ठीक है, तो फरमाते हैं कि ये तो इंसान की इब्तिदाए आफरीनश का जिक्र था, इसके बाद इंतहा की दो मंजिलों का जिक्र है। इब्तिदा आफरीनश यानी बिल्कुल जो आपकी शुरू का मामला था, इंतहा की दो मंजिलें, एक शख्स, एक इंसान को शख्सी इंतहा, एक इंसान की शख्सी इंतहा जिसको मौत कहा जाता है। ठीक है, दुनियावी एतबार से ये उसकी इंतहा है, शख्सी इंतहा, इंडिविजुअल लिमिट। ठीक है, दूसरी पूरी नौ इंसानी और उसके कायनाती खवादिम सबके मजमूए की इंतहा जिसको कयामत कहा जाता है। ठीक है, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाए इनकी यानी हकीकत शनाजी शनासी, और इसको हम तक पहुंचाने की जो अल्लाह ताला ने इनको तौफीक अता फरमाई, हकीकत शनासी और हकीकत को बयान करना, इनके लफ्ज का इस्तेमाल देखें, लिखा है कि उसके कायनाती खवादिम, इंसानियत, नौए इंसानी और कायनाती खवादिम। खवादिम का लफ्ज क्या है, खादिम की जमा, खादिम की। तो ये पूरी की पूरी जो कायनात अल्लाह ताला ने बनाई है ना, ये हमारी खिदमत के लिए बनाई है। जब हमारी शख्सी इंतहा होती है तो ये जो कायनाती खवादिम हैं इनकी इंतहा नहीं होती। हाँ, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए जो अल्लाह ताला ने खवादिम बनाए होते हैं उनकी इंतहा हो जाती है। जैसे मेरे लिए जितनी गिजा अल्लाह ताला ने रखी थी इस दुनिया के अंदर, जब मैं इस दुनिया से चला गया तो अब वो गिजा भी, उसका भी सिलसिला खत्म हो गया। ठीक है, अब जो है वो दूसरों के लिए, मेरे लिए जो था वो खत्म हो गया उसका मामला, लेकिन ओवरऑल तो कायनात में जितनी गिजा मौजूद है वो तो खत्म नहीं हुई ना, लेकिन जब कयामत आएगी वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये वही वाली फिर कल भी जो बात हुई थी हिंदुओं को दावत तबलीग करने के लिए जो शेर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कि खेतियां सरसब्ज हैं तेरी गिजा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं जिया के वास्ते, बहरों पर शम्स व कमर है माहो शुमा के वास्ते, ये जहां तेरे लिए है तू खुदा के वास्ते, तू सिर्फ खुदा के वास्ते है, तू इस जहां के वास्ते नहीं है, तूने जहान की खिदमत नहीं करनी, इस जहान को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है कि तुम इनकी जरूरियात पूरी करोगे, तुम इनकी खिदमत, हत्ता के तौहीद तो ये है कि हम इस जहान की चीजों की मादी खिदमत तो क्या, ये भी हमारा ईमान होना चाहिए कि हम इनकी रूहानी खिदमत भी नहीं कर सकते, वो भी अल्लाह ही की तरफ से है, हिदायत भी अल्लाह ही की तरफ से इनको मिलेगी, अल्लाह ही के बंदे हैं, अल्लाह ही की जमीन है, अल्लाह ही का दीन है, अल्लाह ही ने इनकी हिफाजत करनी है, अल्लाह ही ने इनको ठीक करना है, अल्लाह ही की मर्जी है सब कुछ, हमने तो सिर्फ बंदगी करनी है, बंदगी बंदगी और सिर्फ बंदगी। ठीक है, तो हमने इनकी दुम में नहीं लगना, इनके पीछे नहीं भागना, इनकी जान छोड़ने की जो हमने जान ना छोड़ने की जो कसम खाई हुई है ना दुनिया दुनिया की, हमने कसम खाई हुई है गोया कि हमने दुनिया का पीछा नहीं छोड़ना है, कुछ कर लो, कितना मुझे तुम जलील कर दो, रुसवा कर दो, दुनिया जो है ना वो मुझे धुतकार दे, लेकिन फिर भी मैंने दुनिया की जान नहीं छोड़नी। कितने बड़े हैं हौसले परवरदिगार के कि हम इतनी जलील और कमीनी दुनिया के पीछे भाग भाग करके अपने परवरदिगार को इग्नोर पर इग्नोर किए चले जाते हैं, और वो परवरदिगार हमें फिर भी अजाब हमारे ऊपर नाजिल नहीं करते। हमें जला के भस्म नहीं कर देता, हमें इधर से निकाल करके डायरेक्ट जहन्नुम के अंदर नहीं फेंक देता। क्या करते हैं हम, सोचें जरा हम, कितनी कमीनी और गलीज दुनिया है ये, और हम कैसे जो है ना वो अपने परवरदिगार की नाफरमानी करते हैं इस दुनिया की खातिर। दुनिया से मुराद दुनिया की हर चीज, राइट, सिवाय उस चीज के जो कि परवरदिगार की तरफ हमें मुतवज्जे करने वाली चीज हो, उसके अलावा हर चीज जो है ये कमीनी दुनिया है, हर चीज कमीनी दुनिया है। जूते भी मारती है ना हमें, फिर भी जो है वो हम इसका जान नहीं छोड़ते और अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे नहीं होते। क्या ये बंदगी है? क्या ये अपने परवरदिगार का हक अदा करना है? तो फरमाते हैं कि इंसान की शख्सी इंतहा के लिए फरमाया, थुम्मा कदा अजलन, यानी इंसान की पैदाइश के बाद अल्लाह ताला ने उसकी बका व हयात के लिए एक मियाद मुकर्रर कर दिया। इस मियाद पर पहुंचने का नाम मौत है। जिसको अगरचे के इंसान नहीं जानता मगर अल्लाह के फरिश्ते जानते हैं। मुझे बहुत इस वक्त जो है ना वो एक तकलीफ हो रही है जो कि डांटने पर बहुत मजबूर कर रही है कुछ लोगों को। आप लोग बहुत बुरी तरीके से डांट खाएंगे बगैर किसी उसके यानी लिहाज के, ठीक है? तो बेहतर ये है कि वो जो स्पेशल तफसीर क्लास थी ना उसको फिर से सुन लें आप, उसको आप फिर से सुन लें, वरना फिर आप खुद जिम्मेदार होंगे और फिर आप जो भी करेंगे अल्लाह के हवाले, ठीक है? उस स्पेशल तफसीर क्लास को जो कि 3-4 दिन पहले हुई थी उसको आप फिर से सुन लें, ठीक है? ये मेरे और आप दोनों के हक में बेहतर होगा। चलें आगे फरमाते हैं कि इस मियाद पर पहुंचने का नाम मौत है, जिसको अगरचे इंसान नहीं जानता मगर अल्लाह के फरिश्ते जानते हैं, ठीक है? बल्कि खुद इंसान भी इस हैसियत से अपनी मौत को जानता है कि हर वक्त हर जगह अपने गिर्द व पेश में औलाद आदम को मरते हुए देखता है। तो मौत की हकीकत तो हमें हर वक्त नजर आ रही होती है, फरिश्ते जानते हैं, यानी फरिश्ते लोगों को मरते हुए देखते हैं, ठीक है ना? मौत के फरिश्ते तो खुद जो है वो जान निकाल के आ रहे होते हैं, बाकी फरिश्ते भी जो है वो शायद ऑब्जर्वेशन उनकी चलती रहती होगी कि इधर ये खड़का, ये उधर वो खड़क गया, उधर ये जो है वो दुनिया से जो है वो पर्दा फरमा गया, फलाने के घर के अंदर फलाने के ऊपर मौत आ गई। आजकल तो वैसे भी फरिश्तों को भी ज्यादा देखने को मिल रहा होगा। कल जो है वो मजीद के डॉक्टर साहब आए हुए थे, बल्कि दकतूर हजरात आए हुए थे ताजियत करने के लिए, तो बताने लगे कि दो डॉक्टर्स थे, कहते हैं कि हम एक ही स्कूल के पढ़े हुए, एक ही कॉलेज के पढ़े हुए, फिर मेडिकल साइंस भी हमने एक साथ ही पढ़ी, और अब जो है वो जॉब भी एक ही हॉस्पिटल, हमारे भाई साहब के जो हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, कहते हैं कि हमारे जो है ना वो हमारे कॉलेज के डॉक्टर्स का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है या पता नहीं फेसबुक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है? उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो कहते हैं कि उनमें से हमारी एज ग्रुप के ही सारे लोग हैं, 50s में हैं, ठीक है? तो हमारे ग्रुप में से 32 लोगों का ऑलरेडी इंतकाल हो चुका है। 32 कैसे? सडन डेथ के जरिए, सडन डेथ, ठीक है? एकदम से बंदा गिरा और मर गया, सरवाइव नहीं किया। दूसरे डॉक्टर साहब उनके जो यानी उनके जो कॉलीग और उनके जो है वो बचपन के दोस्त वो कहने लगे कि इस वक्त जो है ना वो ये हो रहा है, ये डॉक्टरों की बात बता रहा हूँ आपको, इस वक्त ये हो रहा है के जो कार्डियक अरेस्ट होता है ना, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, हार्ट अटैक हुआ बंदा उसके बाद बचता नहीं। पहले क्या होता था, हार्ट अटैक होता था बंदा सरवाइव करता था, उसकी एंजियोप्लास्टी होती थी, एंजियोग्राफी होती थी या जो भी होता था, है ना? डॉक्टर लोग ये सारी टर्म्स ज्यादा बेहतर जानते हैं। वो बंदा सरवाइव कर लेता था, चंद साल मजीद जिंदा रहता था या वो चलता रहता था इसी तरीके से। इस वक्त ये हो रहा है कि
बस हुआ और डेट सेट, चंद मिनटों में इधर से उधर, सडन डेथ। हमारे आप में से एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने तो बल्कि कोई हदीस भी शेयर कर लिया। वो हदीस की एक्चुअली मुझे तफरीज भी करने का जहन से निकल जाता है कि वो वाकई सही हदीस है कि नहीं, लेकिन उस हदीस में क्या है कि यानी आखिरी उसके अल्फाज ये हैं कि जिस उर्दू तर्जुमा या अंग्रेजी तर्जुमा के कयामत के करीब जो है ना, ये अचानक मौत जो है ये बहुत आम हो जाएगी। ठीक है ना, अब ये हो रहा है, पहले नहीं होता था इस तरीके से। ठीक है ना, आप भी जानते हैं कि हार्ट अटैक होता था, लोग सरवाइव करते थे, अब ये नहीं हो रहा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर जो है ना वो पेशेंट पे डील करते हैं, उनको मेडिकल साइंस का भी पता है और उनके अपने जानने वाले इतने सारे केसेस, कल बैठे बैठे उन्होंने इतने सारे और केसेस हमें बता दिए, और हमारे अपने जानने वालों में कितने केसेस हैं। बल्कि हमने तो अपनी क्लास में पहले भी शेयर किया था कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ का, उसमें उन्होंने एक सेंटर बनाया है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन सडन डेथ। अच्छा, रिसर्च कर रहे हैं, पता नहीं, सेंटर तो बना दिया है लेकिन ये रिसर्च कोई बाहर नहीं आ रही कि क्या रिसर्च कर रहे हैं, क्यों इतने सारे लोग ऐसे जो है वो मरना शुरू हो गए, पहले क्यों नहीं मरते थे इस तरीके से, अब क्यों सेंटर बनाया है उन्होंने। ठीक है, तो बाकी बातें आप खुद ही सोच लें। अगर बहरहाल, तो अब ये फरिश्ते देखते हैं ना इस तरह की चीजें, और हम भी देख रहे हैं। ठीक है ना, देखें, एक होता है कि इंसान की फैमिली में होता है 10 साल बाद किसी का इंतकाल हो गया, 5-6 साल के गैप से जो है वो भी जो है दूर दूर की फैमिली के लोगों का इंतकाल होता है ना, तो हम जो है वो भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, या बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े होते हैं, वैसे भी जो है वो उनके ऊपर कोई डिपेंड नहीं कर रहा होता, तो और भी ज्यादा जो है वो उनकी कमी ऐसी महसूस नहीं होती जैसे कि किसी जवान का जो जिसके ऊपर लोग डिपेंड कर रहे थे, माँ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, है? उस माँ का इंतकाल हो जाए, अब उन छोटे बच्चों की जो जिंदगी बनती है तो फिर वो तो फिर माँ हर वक्त याद आती है ना कि हाँ भाई वो होती थी तो ये करती थी, वो होती थी तो वो करती थी, राइट? बाप जो है वो ब्रेड अर्नर था, पूरा घर जो है इस पर डिपेंड करता था, अब वो चला गया तो दुनिया जो है वो ऊपर की नीचे नीचे की ऊपर हो जाती है। लेकिन कभी कोई बूढ़ा हो कह के, तो बूढ़े की यादें तो आती हैं, बुजुर्ग की यादें तो आपको आती हैं, ठीक है ना, लेकिन आपकी जिंदगी उनका कोई भी पहलू शायद उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था, बहुत आसानी से भूल जाते हैं। ठीक है ना, तो मौत की भी ना मुख्तलिफ शक्लें और मुख्तलिफ वेरिएशन होती हैं। ठीक है, लेकिन जब बहुत ज्यादा अमवात होनी शुरू हो जाती, तो ज्यादा अमवात का फिर क्या होता है कि अब जो है ना वो हर बंदा फिक्र करना शुरू हो जाता है, और यानी इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन इजिली इग्नोर। ठीक है, जैसे गजा के अंदर लोगों ने देखा भी, उसकी न्यूज भी पढ़ी, अब रोजाना के हिसाब से जो है वो दर्जनों, कभी जो है वो 100 से ज्यादा लोग जो है वो किसी बॉम्बिंग के अंदर खत्म हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, अब वहां पर तो हर तरफ मौत का नाच चल रहा है। ये एक अलग चीज होती है वॉर जोन के अंदर मौत, और एक होता है कि आम, हम याद है कि जब अमेरिका के अंदर वो हुआ था ना 11वीं शरीफ, यानी नाउजुबिल्ला कुछ लोग कहते हैं उसको, सितंबर 11 के अंदर जो दो बिल्डिंगें गिराई थी इन्होंने, ठीक है, और उसके अंदर इतने सारे, तो हमारे एक बड़े कजन, वो यानी बहुत ही पढ़ने लिखने वाले, वो हमारे घर आए हुए थे, तो उन्होंने अजीब मुझे बात कही कि जब से ये सितंबर 11 हुआ है ना, तो अब से अमेरिका के अंदर जो है वो ये वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट जो है ना ये आना शुरू हो गया, पहले नहीं था। वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट कि घर से जो है वो जॉब करो, वो क्यों, क्योंकि अमरीकियों ने इतने सारे अमरीकियों को एक साथ मरते हुए पहले नहीं देखा, एक साथ 3,500 अमरीकी एकदम से मर गए, ये कॉन्सेप्ट ये कभी अमरीकियों ने देखा ही नहीं था। आखिरी जो जंग जिसके अंदर अमरीकी मरे थे ना वो था वियतनाम वॉर, और वो 1950s में हुई थी, वो भी एक साथ नहीं मरते थे, 3 साल में जाकर के उसमें कई हजार अमरीकी मरे थे, लेकिन वो 1950s में हुई थी, और उससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। एकदम से 2001 के अंदर जो उन्होंने 2,000 सॉरी ढाई 3,500 अमरीकियों को, अब उनको फिक्र हो गई कि यार हम जो है ना हम तो दफ्तर में ही सारी जिंदगी गुजार देते हैं, हम तो जो है ना वो अपनी फैमिली के साथ टाइम ही नहीं लगाते, बच्चों को ही नहीं देखते, तो चलो जो है ना वर्क फ्रॉम होम जो है वो करना चाहिए, अब सारी की सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और आसानियां हैं, तो घर से काम करेंगे, फैमिली के साथ वक्त लगाएंगे।
तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना उस वक्त अमेरिका के अंदर फिर आम होना शुरू हो गया था, और कोरोना में जो है वो एक्सट्रीम पे पहुंच गया, सारी दुनिया ही वर्क फ्रॉम होम कर रही थी उसके बाद। तो मौत की जो जितनी ज्यादा इंसान को ऑब्जर्वेशन होती है ना, तो उससे उसको मौत की जो है वो एक फिक्र होनी शुरू होती है, ठीक है। और जितना कम हो उतनी ज्यादा ना वो समझता है कि जी किसी ने नहीं मरना और मैंने तो बिल्कुल ही नहीं मरना, राइट, किसी ने नहीं मरना और मैंने तो बिल्कुल ही नहीं मरना, ये समझना शुरू हो जाता है। ये इंसान की हकीकत है, जहालत भी और बेवकूफी भी, ठीक है। आजकल के खाने पीने में चेंजेस होने की वजह से मे बी सडनली डेथ होती है, नहीं ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये खाने पीने की चेंजेस जो है वो एकदम से अभी नहीं हुई है, ठीक है। तो ये बहुत अरसे से ये हम इस किस्म का खाना खा रहे हैं जिसकी वजह से बीमारियां तो बढ़ गई हैं, लेकिन सडन डेथ जो है ना ये खाने की तरफ कोई भी मंसूब नहीं कर, इवन डॉक्टर्स जो हैं वो इसको मंसूब जो है ना वो उस तमाशे के साथ कर रहे हैं जो कि सारी दुनिया में एक साथ मचाया गया था, ठीक है। और उसमें फिर आपको जो अब नए नए कुछ लोग तो खौफ से ही मर जाएंगे इसके ऊपर। चलें आगे चलें, तो कहते हैं कि इसके बाद पूरे आलम की इंतहा यानी कयामत का जिक्र इस तरह फरमाया, व अजलुम मुसम्मन इंद, मौत का तस्करा, कफा बिल मौती वाइदन, मौत का तस्करा, जो इतनी देर तक आपके सामने मौत मौत मौत, ठीक है, तो क्यों, क्योंकि कफा बिल मौते वाइदन, यानी मौत जो है ना वो वाजो नसीहत करने के लिए काफी है, इंसान को जगा देने के लिए कि देखो मेरा कोई लम्हा जो है ना मैं फजूलियात में जाया ना करूं, किसी वक्त भी मौत आ सकती है, ठीक है, तो मोहलत खत्म हो जाएगी। अब जो है वो नफरतों में और जो है वो अपने पुराने बदले निकालने में और जो है वो बेवकूफी की हरकतें करने में जिनका कोई दुनिया का फायदा ना आखरत का फायदा, मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ, कैसे अफोर्ड कर सकती हूँ इन सब चीजों के अंदर अपनी जिंदगी को लगाना। कब्रिस्तान जाने की भी इसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम तरकीन फरमाई, इबरत की निगाह के साथ, ठीक है। यही एक एक बहुत अहम पॉइंट ये भी है यहाँ पर कि मौत जो है ना ये इंसान को जगा देने के लिए काफी होती है या काफी होनी चाहिए। मौत एक ऐसी चीज है, इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है, इतनी पावरफुल चीज है ये मौत, ठीक है, कि ये इंसान को जगा देने के लिए काफी होनी चाहिए, है ना भाई। अभी कितनी बातें आपने मौत के बारे में सुनी है, क्या कोई मामूली बातें, हाँ भाई ये तो डिज्नी वर्ल्ड की कहानियां थी, राइट, आपने सुनी और यू एंजॉयड इट मे बी, राइट, या ये क्या आपने हमारा टाइम जाया किया इस तरह खामखा के फजूल की बातें करके, कोई शख्स ऐसा सोच सकता है, ठीक है ना, कि जी आपने हमारा टाइम जाया किया मौत के बारे में बातें करके, हम इसलिए तो नहीं आए थे इस क्लास के अंदर, हम तो कुरान पढ़ने के लिए आए थे, मौत के बारे में सुनने के लिए कोई थोड़ी आए थे। तो भाई कुरान मजीद में मौत नहीं है क्या, है मौत का जिक्र नहीं है क्या, क्यों है कुरान मजीद में मौत का जिक्र। बहरहाल तो कोई तो ऐसे सुने कि नहीं आपने टाइम जाया किया, हमने तो बड़ा, या कोई कहे कि हमने तो एंजॉय किया इन वाली सारी बातों को, इसलिए सही बातें करी गई थी आपके सामने, ठीक है ना, इसलिए की गई थी ना कि मौत है इतनी शदीद चीज है कि वो कैसे जो है वो सारी चीजों को, लज्जतों को और हर चीज को खत्म कर देती है। तो मौत के अंदर अल्लाह ताला ने मौत की हकीकत में इतनी कुव्वत रखी है, लेकिन लेकिन ये कि अगर किसी शख्स के सामने मौत इस तरीके से सामने आए और बार बार ये आती रहे, लेकिन वो उससे इबरत पकड़ने की बजाय कि उसकी तवज्जो जो है वो दुनिया से उसकी उसका दिल कट जाए और अल्लाह से जुड़ जाए कि मैंने तो अल्लाह की तरफ जाना है, जैसे कि ये सारे लोग अल्लाह की तरफ जा रहे हैं, दुनिया से टूट रहे हैं, दुनिया से कट रहे हैं, तो मैंने भी तो कट जाना है ना, तो अब ऐसी दुनिया से क्या दिल लगाना, अल्लाह से दिल लगाओ, राइट, जैसे कि हमारे मशायख कैसी कैसी हीरे मोतियां हमें के
जो दुनिया से मोहब्बत करता है वो एक ना एक दिन दुनिया से जुदा कर दिया जाता है। देखिए, मोहब्बत दो चीजों से, एक है दुनिया से मोहब्बत, एक है अल्लाह से मोहब्बत। इन दोनों की हकीकत हमारे मशायख इस तरह बयान करते हैं कि जो दुनिया से मोहब्बत करता है वो एक ना एक दिन दुनिया से जुदा कर दिया जाता है, और जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो एक ना एक दिन अल्लाह से मिला दिया जाता है। अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, यानी मौत तो दोनों को आनी है, दुनिया से मोहब्बत करने वाले को भी मौत आनी है, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले को भी मौत आनी है, लेकिन जो दुनिया से मोहब्बत करने वाला है उसका क्या हशर होता है कि उसका महबूब उससे जुदा कर दिया जाता है। तो महबूब जुदा हो गया तो कितनी अजियत होती है उसके ऊपर, और अल्लाह से मोहब्बत करने वाले पर भी मौत आती है, लेकिन उसके साथ क्या होता है कि वो अपने महबूब से मिला दिया जाता है, उसके लिए मौत कितनी कितना बड़ा तोहफा है उसके लिए, ये मौत कितना बड़ा तोहफा है उसके लिए मौत। हम किन में से होना चाहते हैं? हम उनमें से होना चाहते हैं कि जिनके ऊपर मौत आए तो वो अजियत की इब्तिदा हो जाए उनके लिए, या हम उनमें से होना चाहते हैं कि जिनके ऊपर ये हकीकत जब आए तो वो उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी बन जाए। ये फैसला हमारे ऊपर है, ठीक है? तो अब जो शख्स मौत को इस तरीके से अपने सामने देखे कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं इस दुनिया से, ये भी मर रहा है वो भी मर रहा है, और रोजे मरना का उसका ये मामूल हो, सुबह से लेकर के जो है ना वो रात तक उस वो यही देखता हो, उसकी ड्यूटी ही ये हो, उसकी ड्यूटी ही ये हो कि वो मरने वालों को हैंडल करता है, जैसे गोरकन, गोरकन के पास जिंदा लोग तो नहीं आते, तो गोरकन को तो इस तरह से आप थोड़ा सा एग्जाम कर सकते हैं क्योंकि उसके पास जिंदा लोग हैं, उसके पास तो खाली खाली मरे हुए लोग आते हैं, और वो होता भी बेचारा अच्छा खासा अनलेटर्ड किस्म का इंसान होता है। लेकिन दकतूर साहब जो होते हैं, या दकतूरा साहबा जो होती है आजकल, पहले तो नहीं होती थी दकतूरा साहबा, लेकिन आजकल तो सारी दकतूरा ज्यादा होती हैं बल्कि, ठीक है, डॉक्टरनिया और डॉक्टर, इनका क्या जॉब है, इनकी क्या ड्यूटी है? इनकी ड्यूटी तो बीमारों से डील करना है ना, बीमारों के साथ इनका सारा मामला चलता है ना, ठीक है? अब इनके सामने कितने लोग जिंदगी की हालत में आते हैं जो कि बीमारी की हालत कहलाती है, लेकिन वो जिंदा होते हैं, और कितने लोगों का इनको पता चलता है इनके अपने आंखों के सामने या इनके आंखों के पीछे, कितने लोगों का इनको पता चलता रहता है जी वो नहीं सरवाइव कर सके। अब वालिद साहब की ताजियत में लोग आ रहे हैं, वो इस तरह के बहुत सारे वाकयात भी बता रहे हैं ना, एक साहब आए, वो एक डॉक्टर, ईआर में भी उन्होंने काम किया आगा खान हॉस्पिटल में, तो कहने लगे कि जी हमारे सामने तो ये बहुत होता था कि एक मरीज जो है ना वो, हम सुबह को जब अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते थे तो हमें बताया जाता था कि ये मरीज जो है ना ये तो बस चंद घंटों का मेहमान है, इसने नहीं बचना, तो अब जब ये दुनिया से चला जाएगा ना तो इसका जो बेड खाली होगा ना भाई, ये तो अब डॉक्टर और हॉस्पिटल वाला निज़ाम है, तो वो कहते थे जी अब इसका बेड खाली होगा ना तो वो फलाना मरीज जो बेड का इंतजार कर रहे हैं ना तो उसको ये वाला बेड दे देना, और दूसरे मरीज के बारे में हमें बता, ये डॉक्टर साहब मुझे हमें बता रहे हैं, ठीक है ना, आप में से शायद एक दो वहां पे मौजूद भी थे, सुन रहे थे इस बात को, तो वो बता रहे हैं कि और दूसरे मरीज के बारे में हमें बताया जाता था कि ये इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह बोले या ना बोले जो भी, ये तो ठीक हो जाएगा, शाम तक जो है ना ये इसको डिस्चार्ज कर देना, तो इसका जो बेड खाली होगा ना तो वो फलाने मरीज को दे देना जो कि बेड का इंतजार कर रहे हैं। कहते हैं कि हमारे सामने कितनी दफा ऐसा हुआ कि बिल्कुल रिवर्स हो गया मामला, जो कि जिसके बारे में हमारा ख्याल था, हमारी साइंस बता रही थी कि उसने नहीं बचना, वो चलता हुआ अपने घर वापस गया, और जिसके बारे में हमें बताया गया था कि इसने जो है वो चल के घर वापस जाना है, वो बिगड़ता गया, उसकी हालत बिगड़ गई और वो फिर मौत की हालत में यहां से वापस गया। तो ये स्पेशली ईआर डॉक्टर्स या वैसे हॉस्पिटल के अंदर जो मुख्तलिफ इनकी फैकल्टीज होती हैं, वो जो डॉक्टर्स होते हैं उनके सामने ये मुस्तकिल का मामला है। अब अगर ये डॉक्टर साहब जो है वो मौत को इस तरीके से आता हुआ और लेके जाता हुआ देखते रहें, लेकिन इम्यून हो जाएं इससे, इबरत पकड़ने के बजाय इनके लिए जो है ना ये रोजमर्रा की चीज हो जाए
और जो है वो ऐसे ही बस जैसे कंप्यूटर इंजीनियर जो है वो कंप्यूटर को जो है वो जिस तरीके से ठीक करता है, कोई इबरत नहीं पकड़ता कंप्यूटर को ठीक करते हुए, राइट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को जिस तरीके से हैंडल कर रहा होता है, मौत और जिंदगी के कश्मकश को तो नहीं देख रहा होता ना, इबरत तो नहीं पकड़ने की जरूरत होती उसको इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को देख देख करके। उसी तरीके से डॉक्टर साहब भी ऐसे ही बन जाए तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना, जिन्होंने इसके लिए इबरत का खसूसी इंतजाम किया था, हमारे लिए उमूमी इंतजाम है, नॉन डॉक्टर्स के लिए उमूमी इंतजाम है इबरत का, डॉक्टर के लिए खसूसी इंतजाम था इबरत का। जब इसने खसूसी इंतजाम, ये इंतजाम अल्लाह की तरफ से क्या होती है, ये नेमत होती है अल्लाह ताला की तरफ से, नेमत है ये अल्लाह ताला की तरफ से खसूसी इंतजाम कि तुम दुनिया से कटो मुझसे जोड़ो, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि इसके दिल के ऊपर ताला पड़ जाएगा, इसके दिल के ऊपर कुफल लग जाएगा, इसका दिल मुर्दा हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह की तरफ से इस खुसूसी इंतजाम की इसने कदर नहीं करी। ये सबब बन जाएगा अल्लाह के अजाब का, अल्लाह की नाराजगी का, ठीक है। इसी वजह से डॉक्टरी का जो पेशा है ना, ये बड़ा खतरनाक पेशा है, जिस तरह से उलमा का जो पेशा है ये भी बड़ा खतरनाक पेशा है, बल्कि डॉक्टरी से ज्यादा खतरनाक पेशा है, क्योंकि उलमा के सामने तो फिर अल्लाह का कुरान खुला होता है, उसके अंदर इंसान की हकीकत खुली हुई होती है, उसके अंदर मौत की हकीकत खुली हुई होती है। अगर मौलवी साहब भी जो है ना वो वैसे बन जाए जैसे कि ये डॉक्टर साहब हैं कि इबरत नहीं पकड़ रहे, उनका तो इससे भी बुरा अंजाम होता है। जब ही हदीस मुबारका के अंदर क्या बताया हमें, सबसे पहले जहन्नुम में डाले जाने वाला वो ऐसा आलिम दीन होगा जिसने इबरत नहीं पकड़ी, अपने इल्म पे अमल नहीं किया, के क्या मतलब है इबरत नहीं पकड़ी उसने, अपनी जिंदगी को चेंज नहीं किया, राइट। तो ये है मामला, ठीक है। तो अब हम बहुत नेक बनना, बहुत जो है वो हर वक्त की जो है वो जाकिर बन जाएं और शागल बन जाएं, ये तो अल्लाह ताला बना दे, दुआ करनी चाहिए इसके अल्लाह ताला से, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम इसी वक्त क्या काम कर सकते हैं, ठीक है, इसी वक्त, राइट नाउ एंड राइट हियर, अभी हम क्या काम कर सकते हैं, अभी हम अल्लाह ताला से जो है ना वो माफी मांग सकते हैं, माफ कर दीजिए ऐ अल्लाह, माफ कर दीजिए ऐ अल्लाह, माफ कर दीजिए, मेरे सामने आपने कैसी कैसी बातें खोली हैं, ऐसे जिंदगी के वाकयात खोले मेरे सामने, ऐसे अपने कुरान को मेरे सामने खोला, ऐसी नसीहत की बातों को मेरे सामने खोला, लेकिन ऐ अल्लाह मैं अभी भी दुनिया से ना कट सकी, मैं अभी भी दुनिया से नहीं कटी और अभी भी आपसे नहीं जुड़ पाती हूँ या जुड़ पाता हूँ, आप मुझे इसके ऊपर मुझे माफ कर दीजिए ऐ अल्लाह, माफ कर दीजिए ऐ अल्लाह, माफ कर दीजिए। इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार, मानी के इस्तेहजार के साथ इस्तिग़फ़ार, राइट, हर वक्त इस्तिग़फ़ार। ये इस्तिग़फ़ार करना जो है ना, ये फिर बड़ी बड़ी मुसीबतों से हमें बचा लेता है, अल्लाह की नाराजगी से बचा लेता है। नेक बन ना सके, लेकिन नेक ना बनने के ऊपर नादिम तो है ना, शर्मिंदा तो है ना, अल्लाह ताला से माफी तो मांग रहे हैं ना, अल्लाह ताला की मेहरबानी कि अल्लाह ताला हमें माफ कर देते हैं जब माफी मांगते हैं हम, ठीक है ना। अल्लाह ताला हमें माफी मांगने वालों में और पाकीज़ा रहने वालों में शामिल फरमा दे। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।